के अंदर भगवान ने प्यार कर लिया। मनुष्य प्यार करते हैं कुछ कुछ देखकर, भगवान प्यार करता है कुछ और देखकर। क्या देखा होगा? कौन सी विशेषता देखी तुम्हें पता है? नहीं बोलो। सरलता देखी। हाँ, पहले बाबा को पहचानने की विशेषता। यही मेरे कल पहले वाले बच्चे हैं। बाबा एक प्रश्न बहुत पूछा करते थे जब आते थे साकार में, मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ या तुम मुझे? तो सबका एक यही उत्तर होता था, आप ही ज्यादा करते हो, क्योंकि हमारा प्यार तो बढ़ता रहता है ना, कभी मनुष्यों में तो कभी वस्तुओं में। भगवान तो वैसे भी प्यार का सागर है, बट भी जाए तो फर्क ही नहीं पड़ता, सबको बहुत बहुत मिल जाता है। तो हम में उसने बहुत कुछ देखा। यही मेरी देव कुल की आत्माएं हैं, देख लिया उसने, ये वही हैं। हमें भी याद दिलाया तुम वही हो, यही मेरे काम के हैं। उसने देखा यही मेरे काम के हैं। उसको चाहिए थे ना, जो उसकी स्थापना के कार्य को संपन्न करे। वो खुद भी बहुत कुछ करते हैं लेकिन कराते ज्यादा हैं, क्योंकि हमारा भाग्य बनाना है। तो आज हम चर्चा करते हैं संडे की मुरली पर, 4 दिन पहले 5 दिन पहले। याद तो आपको नहीं होगी, मैं याद दिला देता हूँ। स्वमान की बड़ी बड़ी बातें बाबा ने कही। हमेशा तो कुछ ऐसे कहते हैं जो सब समझ जाएं, पर इस मुरली में थी थोड़ी सी बहुत बड़ी बातें। बाप विधाता और वरदाता, अपने मास्टर विधाता और मास्टर वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। विशेष बात, बाबा ये कहते रहे साकार में भी, जैसी मेरी महिमा है वैसी ही मैं तुम्हारी महिमा भी करा देता हूं। ये बहुत बड़ा प्यार है ना उसका, कि केवल मेरी महिमा ही ना हो, सब बच्चों की हो जाए। इसलिए देवियों के मंदिरों में, विष्णु महादेव सबके मंदिरों में, इवन हनुमान के मंदिर में भी वही महिमा सब गाते हैं जो शिव की गाते हैं। किसी किसी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। दूसरे दो स्वमान भी थे इस मुरली में, एक था विधि विधाता और दूसरा था सिद्धिदाता। भक्ति में तो सिद्धियां सभी ज्यादातर देवियों से ही लेते हैं, उसमें देवता भी पीछे हैं, देवियां ही आगे हैं। कोई महाकाली से, कोई दुर्गा से, दो से ज्यादा लेते हैं, और भी हैं देवियां। सिद्धियां जिसको चाहिए वो देवताओं की ही आराधना करते हैं। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने में क्या शर्त होती है? नहीं, विधि तो उनके पास है, वो हमारी विधि नहीं है, उनकी विधि अलग है। पवित्रता, इस बात पे हम बहुत ध्यान देंगे आज। विधि विधाता, इसका अर्थ है विधि निर्माण करने, विधि माना कानून बनाने वाले, चारों युगों के कानून बनाने वाले। अब के MLA भी कानून बनाते हैं राज्य का, MP कानून बनाते हैं पूरे देश का, उनके कानून तो कितने झगड़े वाले हैं, कैसे झंझट होते हैं, लड़ाई होती रहती है। हमें बाबा विधान बनाना सिखाते हैं। तो देखो ये एक बात बाबा ने भी कही, तुम प्योरिटी धारण करते हो तो देवताओं के दर्शन करने के लिए भी प्योरिटी अपनानी पड़ती है, और कोई सिद्धि किसी को चाहिए प्योरिटी के बिना नहीं मिलेगी। किसी को 40 दिन रखनी पड़ती है, किसी को ज़्यादा। तीर्थों पर भी अगर अच्छी भक्ति किसी को करनी है प्योरिटी चाहिए। गणेश बहुत बैठे हैं ना, गणेश की तरफ के गणेश स्थापना करते हैं घरों में, किस किस ने किया? आपके यहाँ तो गणेश की पूजा होती होगी ना, नहीं होती? किसी ने किया था क्या गणेश स्थापित करते हैं ना घरों में, 7 दिन 10 दिन, कोई कोई तो 1-2 दिन में हटा देते हैं। बताते हैं मुझे क्यों हटा देते हैं, वो जो नियम है वो पालन नहीं होते। खान पान भी शुद्ध चाहिए, प्योरिटी भी चाहिए, और अच्छा उस टाइम जीवन भी अच्छा, चाहे 3 दिन ही हो, शुद्ध विचार, ये नहीं पाप करते रहे होना ही चलता, तो गणेश जी खुश होंगे। तो प्योरिटी, विधि विधान, विधि विधाता तुम हो। दूसरी बात बाबा ने कही थी, याद करो, भगवान एक है, तो ये मान्यता भी सभी धर्मों में चलती रहे, गॉड इज वन। भले भारत में भी देवी देवताओं की पूजा बहुत हो रही है, लेकिन गॉड इज वन वो कौन है भले ये पता नहीं, लेकिन ये मान्यता चलती आई भक्ति में। एक बात और बाबा कहते थे, तुमने यहाँ योगयुक्त भोजन बनाया तो तुम्हारा ब्रह्मा भोजन भक्ति में, जानते हैं ना सभी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कोई ब्रह्म भोज कहता है, कोई अलग अलग नाम देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना पुण्य मानते हैं। हर गृहस्थी साल में 1-2 बार तो ब्राह्मणों को भोजन खिलाएगा ही, सन्यासियों को भोजन खिलाते हैं। हम तो जब छोटे थे प्रथा थी कि जब तक किसी एक सन्यासी को भोजन नहीं खिलाया दिन में तो समझते थे अधूरा रह गया। तो देखो भारत की सभ्यता कितनी महान, यहाँ से शुरू हुआ बीच देने की प्रथा, बाबा से शुरू हुई, भक्ति में भी देना चलता रहा। और बाबा ने एक बहुत अच्छी और वो ये बात बताई है कि भक्ति में भी एक रसम है, जिस चीज की कमी पड़ रही है जीवन में उसका दान कराते हैं, अन्न दान, बर्तन दान, थोड़ा पैसा दान। हम भी सिखाते हैं लोगों को, किसी को बहुत बीमारियां रहती हो ना, हॉस्पिटल में थोड़ा दान करो, गरीबों को दवाई दिला दो, कहीं भी मदद कर दो किसी को। इसके रिजल्ट सचमुच बहुत अच्छे हुए। एक सेंटर ने किया ये दिल्ली में, 5-6 साल पहले किया, सभी भाई बहनों को कहा, एक भंडारी रख दी अलग कि ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए भेजना है, जितना आपकी दवाइयों पे रोज खर्च होता है उसे थोड़ा सा हिस्सा, चाहे चौथाई चाहे 10वां हिस्सा, इस भंडारी में डालना। लोग ठीक होने लगे, फिर आधा डालने लगे, फिर ठीक हो गए तो पूरा ही डालने लगे। मास में खर्च होता था हमारा तो 2000 रुपये, भाई 5000 खर्च होते थे। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में देने से, क्योंकि पेशेंट की सेवा होगी, बहुत हल्के में इलाज कर दिया जाता है, फ्री भी करते हैं, तो शारीरिक लाभ हो गए, बीमारियों में लाभ हो गए थे, ये प्रैक्टिकल सत्य है। तो जो जो श्रेष्ठ कर्म हमने यहाँ किए, श्रेष्ठ कर्म किसे कहते हैं? सबसे श्रेष्ठ कर्म, और बोलो, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, और बोलो, ठीक है, ये सब अच्छे हैं, पर वे कर्म जो योग्युक्त होकर किए जाते हैं सर्वश्रेष्ठ कर्म हैं। ये सब तो हैं ही, प्योरिटी, किसी को ज्ञान देना, भगवान से मिला देना, इससे बड़े ये तो किसी ने सोचे भी नहीं है दुनिया में कि कोई भगवान से मिलाता होगा क्या। तो हम जो योग्युक्त होकर कर्म करते हैं वो पूरे कल्प के लिए, कुछ भक्ति के लिए और कुछ सत्युग त्रेता के लिए विधान बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें नाम दिया, तुम विधि विधाता हो। कितना बड़ा टाइटल दिया है ये, ये हमारी टाइटल, ये हमारी स्वमान हमें क्या याद दिलाते हैं, अब सोचना है। स्वमान केवल रटने की चीज नहीं है, क्या याद दिलाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुरली में ये भी कहा, तुम हीरो एक्टर हो, ये तो वैसे भी आता रहता है, हीरो एक्टर्स पे नजर रहती है सभी की, तुम पर भी सबकी नजर है। मधुबन निवासियों से मिलते दो बात कही ना ये, तुम ऊंची स्टेज पर हो, अब आप सब भी मधुबन निवासी है ना, ऊंची स्टेज पर हो, सबकी नजर है। और हीरो और हीरोइन के लिए एक बात और है, उन्हें सब फॉलो करते हैं, जैसे कपड़े उन्होंने पहने, युवक तो फटाफट वैसे ही पहन लेंगे, चाहे फटी हुई पैंट हो, महंगी हो गई वो पैंट तो तुरंत फॉलो कर लेते हैं ना। हमें फॉलो संसार करता है। दूसरा बहुत गहरा उदाहरण, गहरी बात मधुबन वालों के लिए, और ये संपूर्ण सत्य बातें हैं, किले ऐसे बनते थे, देखो तब इंजीनियर नहीं थे, आर्किटेक्ट नहीं थे, लेकिन वो उन किलों को तोड़ नहीं पाया था कोई, हजार डेढ़ हजार साल तक तो वो खड़े रहे, फिर आक्रमणकारियों ने तोड़े उन्हें। ऐसे किले, ठंडी हवा आ रही, जयपुर का किला आप देखो, कौन सा महल है वो अंदर है, आमेर का तो बाहर है, एक किला अंदर भी है ना जिसमें हवा आती है, हवा महल, जल महल, ऐसे किले जिनमें कहीं अंधेरा ही नहीं होता, क्योंकि उन दिनों बिजली तो थी नहीं, तो इस तरह से निर्माण किए गए कि रोशनी आती रहे। तो बाबा ने कहा एक दीवार को टच करेंगे ना ऐसे तो सारा किला गूंजता रहेगा, ये होता था। तो बहुत ज्यादा गोपचर रखने की जरूरत नहीं, पता चल जाता था कोई आया है। तो मधुबन है गुंबज, गुंबज देखे ऊपर है हमारे एरोप्लेन में, आवाज करेंगे तो गूंज के वापस आ जाएगी, गूंजेगी। हमारे यहाँ एक पहाड़ी भी है, उसको मोमा पहाड़ी कहते हैं, तो वहां भी अगर हम आवाज बोलेंगे ना ओम शांति, तो ऐसा लगेगा दूर गूंजती हुई जा रही है वो आवाज, कभी टकरा के वापिस आई है। तो क्या अर्थ हुआ इसका, जो कुछ हम यहां करेंगे, करेंगे नहीं सोचेंगे भी, वो फैल जाएगा, सब जगह फैल जाएगा वो। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, दीवारों को भी कान होते हैं। इसलिए सोच समझ के किसी की निंदा करो, क्योंकि वो सुन लेगा दीवारों से, फिर वो तुमसे लड़ने आ जाएगा। तो हमें सावधान करने के लिए बाबा ये हमारी ऊंचाई हमें याद दिलाते हैं, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे संकल्प भी संसार तक पहुंच रहे हैं, तुम्हारे हर कर्म को फॉलो कर रहे हैं लोग, और ये बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। हम मान लो यहाँ बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमें देखकर 1,00,000 लोग पुरुषार्थ करने लगे, पुण्य हो गया ना बहुत बड़ा, घर बैठे पुण्य, बिना पैसा खर्च किए पुण्य, और किसी ने पाप कर दिया, कोई लड़ गए, पहुंच गई दुनिया में, कहेंगे वहां भी तो लड़ते, हम लड़ लिए तो क्या हुआ। तो एक गलत वेव, गलत तरंगे फैल गई, उसका पाप बोझ। तो हम सभी ध्यान दें, एक वरदान एक स्वमान तुम विधाता हो, मास्टर विधाता, दूसरा वरदाता हो, और तीसरा सिद्धि दाता। चौथे की चर्चा हमने कर ली। सिद्धियां देवियों से लेते हैं तो देवियों के पास सिद्धियों के भंडार होंगे ना, उन्होंने बहुत सिद्धियां ले ली होंगी, इसलिए उनके चित्रों के द्वारा भी सिद्धियां मिलती हैं। अब हमें सिद्धि स्वरूप जीवन जीना है। किसको मिलेगी यहां सिद्धि? और इसी से जुड़ा हुआ वरदान, तुम मास्टर वरदाता हो। हमने बाबा से इतने वरदान ले लिए कि हम भी वरदाता बन गए, भाग्य विधाता हो। हमने बाबा से इतना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया कि हम भी दूसरों के भाग्य बनाने वाले बन गए, मास्टर भाग्य विधाता। ब्रह्मा को भाग्य विधाता मानते हैं और कुछ देवियों को भी, दुर्गा देवी को खास भाग्य विधाता, सिद्धि दाता, बुद्धि दाता, पाप नाशिनी। देखो वही जो शिव बाबा की महिमा, वही पाप नाशिनी, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, दुख हरने वाली, वही महिमा है ना। तो हमने यहां अपना ऐसा स्वरूप बनाया है, बाबा से वरदान प्राप्त किए हैं तो वरदाता बन गए। अब वरदान कौन प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चिंतन करेंगे। कौन प्राप्त कर सकते हैं? परम सदगुरु शिव बाबा से वरदान, और उन वरदानों को इतना यूज कर दिया विश्व सेवा में कि हमें भी ऐसा वरदान मिल गया कि तुम भी वरदाता। वरदान किसे मिलेंगे परम सदगुरु से? जो बाबा ने कहा वो जीवन में, और बाबा की याद में बुद्धि, और पवित्रता। बोलते जाओ, ठीक बोल रहे। अमृत वेले बाबा से वरदान लेंगे। तो बाबा ने एक तो ये कहा कि अमृत वेले भोलानाथ राजी बनकर बैठता, राजी हो कर बैठता है, राजी, भोलानाथ प्रसन्न है। ये मुरली है 77 या 78 की, बहुत सुंदर मुरली। उस टाइम तुम बाप को मना सकते हो, देखो ये शब्द, रिझा सकते हो, क्षमा ले सकते हो, विजय माला में आने का वरदान ले सकते हो। बाबा ने तो ये बोल दिया, आठ की माला में आने का वरदान ले सकते हो। राजी होकर बैठा है, सब कुछ देने को तैयार। जैसे श्री कृष्ण को दिखाया ना सुदामा की, एक मुट्ठी खाई, एक लोक तेरे नाम, दूसरी खा ली, दूसरा भी तेरे नाम, अब तीसरी खाने लगा तो क्या किया रुक्मणी ने, हाथ पकड़ लिया, सारा ही दे दोगे हमारा क्या होगा। तो भोलानाथ भी प्रसन्न होकर बैठा रहता है, ले लो जो चाहो। तो अमृत वेले लेना आना चाहिए, मांगते रहे उससे कुछ मिलेगा नहीं। हम अपने को योग्य बनाएं, और सबसे बड़ी योग्यता है उसमें बुद्धि को स्वच्छ कर दें। स्वच्छ बुद्धि में ही तो वरदान आएंगे, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। गंदगी पड़ी हो बुद्धि में तो बाहर फेंक देगी वो वरदानों को। अब ये सब को सोचना है, हमने अपनी बुद्धि को कितना स्वच्छ किया है, ये अलग सब्जेक्ट है। क्या भर लिया है बुद्धि में, प्योरिटी भरेंगे, दिव्य ज्ञान भरेंगे, ईश्वरीय नशा और स्वमान रखेंगे बुद्धि में, आ जाएंगे वरदान। बाबा का महावाक्य याद आ गया मुझे भी, बहुत दिन के बाद याद आया। जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनकी बुद्धि में ही वरदानों को धारण करने की शक्ति आती है। ध्यान देंगे सभी, वरदानों से झोली भरनी है, बहुत बड़ी चीज है वरदान। जो लंबे समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उनकी बुद्धि में ही शक्ति आती है वरदानों को धारण करने की। वरदान जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई ना, वैसी वैसी बुद्धि में ठहरेगा नहीं, वो निकल जाएगा, थोड़ा दिन काम करेगा फिर निकल जाएगा। जैसे सिद्धि वाले लोग जो है ना आजकल, जिसको बाबा ने कहा उनकी रिद्धि सिद्धि है, वो उसका मिसयूज बहुत करते हैं। यूज भी करते हैं तो किसमें, पैसा कमाने में। आजकल का हाल जो दुनिया का है, सिद्धि वाले मैंने बहुत देखे, पैसा कमाने के लिए सिद्धियां लेते हैं, बहुत धन माल मिल जाए, वही फलाने को मार दो 50 लाख देता हूँ, हो जाओ तैयार। इसको उनमें कहते हैं मूठ मार दी, मारक मंत्र। अब मार तो दिया, लेकिन ये 50 लाख इसे भी तो मारेंगे। अब ये प्रैक्टिकल है, रिटर्न होगा ना तुरंत, क्योंकि ये सिद्धियां धन कमाने के लिए नहीं होती। मैं एक मौलाना को जानता हूँ, ब्रह्मा कुमारी के बहुत कांटेक्ट में, बहुत बहुत अच्छी आत्मा। तो मैंने उनसे पूछा, प्रोग्राम में मेरे साथ थे एक जगह, बहुत बहुत ही अच्छे सिया वाले हैं ना, सिया मुस्लिम सॉफ्ट होते हैं। तो कहा हमारे यहाँ पढ़ाते हैं जब, तभी ये नियम बता दिया जाता है, अगर तुम अपनी सिद्धि का प्रयोग करके किसी से एक पैसा भी लोगे असफल। कहा आप मुझे फल भी दोगे ना, मैं नहीं ले सकता, नियम है ये। और आजकल पैसा ही कमाने के लिए सिद्धियां कर रहे हैं, इसलिए तमो प्रधान स्थिति है तंत्र मंत्र की भी, ये उनको नष्ट कर रही है जो इसका प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कई केस देख लिए, इसलिए इस चक्कर में जाना नहीं है। माताओं को समझ रहे हैं क्यों कह रहा हूं मैं, माताओं को, माताएं इस खेल में जल्दी उलझ जाती हैं, उलझना नहीं है, ये महापाप है। रिटर्न होगा, सभी समझ लें, धन दूसरों के लिए जितना बुरा करेंगे वो 10 गुना होकर रिटर्न होगा। मेरे को माताएं फोन करती है ना, मुझे थोड़ा ही पता कौन माता क्या कर रही। हरियाणा की एक माता का परिवार, उसकी ही अपनी दूसरी जेठानी उनके पीछे लग गई, खेती बहुत थी, पति को मरवाया। उन्होंने पूछा किया का तंत्र मंत्र हो रहा तुम पे, लड़के को मरवाया। अब एक लड़का और लड़की बच्ची उसके पीछे पड़ी हुई थी, दोनों को मरवाना है तो सारी जमीन हमारी। मेरे से बेचारी कांटेक्ट करती थी, रोती थी क्या करूं, अब मेरे को भी तो कुछ विधि नहीं आती, इतना ही बताया भाई योग करो, बाबा को भोग लगाओ, अपने लोग अपनों पे। परिणाम क्या हुआ, जो करा रही थी जेठानी उसके दोनों जवान लड़के मर गए एक्सीडेंट में। तब उसे अकल आई, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, आंख भी तब खुली जब सब कुछ चला गया। दोनों जवान थे 25-28 साल के, मैरिड, दोनों की एक्सीडेंट में एक साथ मृत्यु हुई। तो सबको बचना है इस पाप से, इसलिए बाबा ने हमें सिद्धि दी है प्योर, और इसका आधार हमारी प्योरिटी और शुभ भावनाएं ही हैं। हम अपनी शक्तियों का प्रयोग यदि किसी को कष्ट पहुंचाने में कर दें, फोन तो फिर आएगा आपका, ध्यान देना, यदि किसी का बुरा करने में कर ले अपनी सिद्धि का प्रयोग, तो सब कुछ नष्ट होगा। इसलिए प्योर भावना रखनी है, किसी को बाबा से कोई शक्ति मिल भी गई हो उसका प्रयोग कल्याण में करना है। याद रखेंगे जिस दिन कल्याण में कर दिया वो शक्ति समाप्त, पाप बढ़ने लगेगा। तो बाबा ने हमें वरदान दिए, सवेरे वरदान लेंगे सभी, जितनी जिसके पास प्योर बुद्धि और जितना, अब दूसरी बात, बाबा से निर्मल प्यार, बिल्कुल निर्मल प्यार, स्वार्थ भरा नहीं। स्वार्थ क्या होता है, बहुत सारे बाबा के बच्चे ज्ञान में इसलिए थोड़ा होते हैं, बाबा ने यहां मदद कर दी मुझे, बाबा बहुत अच्छा है, और न कि तो तुम परम धाम में राजी, हम इधर राजी गए, ये नहीं। इसलिए मैंने कहा निर्मल प्रेम, अनकंडीशनल प्यार, तो बाबा राजी होता है। और भगवान से प्यार माना, उसके यज्ञ से प्यार, उसकी मुरली से प्यार, उसकी रचना से प्यार, ये नहीं बाबा से तो बहुत प्यार है लेकिन रचना से लड़ाई कर रहे हैं, बाबा तो बहुत अच्छा तुम बहुत खराब हो। तो बाबा ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करता है। तो इस पे ध्यान देंगे, भाग्य विधाता हो तुम सभी, देवियों को भी भाग्य विधाता कहते हैं। गणेश की महिमा में भी ये है शब्द, विष्णु की महिमा में तो बहुत ज्यादा है ही, और शंकर की महिमा में भी, लेकिन इवन हनुमान की महिमा में भी ये गायन थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो हम भाग्य विधाता, बस इसमें ये याद रखेंगे, जिसने अपना भाग्य बहुत बना लिया, भाग्य भरपूर, वही तो देंगे ना, देगा वही जिसके पास बहुत है, थोड़ा होगा तो भी मनुष्य नहीं देता, वो अपने बच्चों के लिए, लेकिन ज्यादा है तो देने की इच्छा होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में जो साधारण होते भी देने की इच्छा रखते हैं कि थोड़े में से भी थोड़ा देते रहो, ये भावना बहुत श्रेष्ठ है। तो हम अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते चलें, सेवा में जो आए हैं वो भाग्य बना रहे हैं। माताएं सेवा में आती है, मैं सोचता हूँ कितनी समझदार हैं ये, घर छोड़ के आ गई 2 मास, घर छोड़ता है कोई 2 मास, कहते ये काम है वो काम है, ये जिम्मेदारी है, पोतरे हैं उनको कौन संभालेगा, बहू नौकरी पे जाती है, मेरी तो जिम्मेदारी है। कईयों को बंधन है और कईयों ने अपने को स्वयं बांध लिया है नहीं बंधन। कौन कौन आई है माताएं सेवा में, अरे वाह बहुत बैठी है, वाह आप बहुत भाग्यवान हो। भाई भी तो बैठे हैं, भाई कहेंगे हमें पूछ ही नहीं रहे, भाइयों में कौन कौन सेवा में आए हैं, भाई भी बहुत बैठे, वाह। तो समय निकालते हैं ना, तो बाबा भी आपके लिए समय निकाल लेता है, आपकी बात सुनने के लिए, आपको मदद करने के लिए। हम कहेंगे हमारे पास तो समय नहीं, तो वो भी तो यही कह देगा ना, मेरे पास भी तुम्हारी सुनवाई करने के लिए अभी समय नहीं, थोड़ा बाद में देख लेता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है अपना भाग्य बनाने के लिए और मधुवन में रहने के लिए। सुख है ना यहाँ, बहुत यहाँ के वाइब्रेशंस में ही सुख है, निश्चिंत जीवन है। अगर आप 2 मास यहाँ रह रहे हैं तो 2 मास चिंताओं से मुक्त, थोड़ी बहुत होगी किसी किसी को, फिर भी चिंताओं से मुक्त रहते हैं ना। और अगर किसी को चिंताएं होती भी हों तो क्या करें, बहुत सारे बाबा को देकर हल्के होने के सब अनुभव करेंगे। ये आदत, ये अभ्यास बहुत पक्का हो जाए, और ये पक्का तब होगा, इसमें विश्वास तब होगा जब हमें अच्छे अनुभव होंगे। तो बोझ मन पे ऐसी जिम्मेदारियां बोझ डाल रही हो कोई, क्या होगा, वो बाबा के ऊपर डाल दो, दे दो, उसके हवाले कर दो। मैं सुनाता रहता हूं हर क्लास में, मुझे बहुत प्रिय लगाओ सब बच्चे, अपने को मेरे हवाले कर दो। भगवान सीधा बैठकर सामने कहता है, अपने को मेरे हवाले कर दो। तो बोझ भी हवाले कर दो, चिंताएं भी हवाले कर दो, और देखो क्या होता है। तो वो जो अनुभव होगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना बन जाएगा। अनुभव होते रहेंगे, आपको हफ्ते में एक अनुभव हो गया छोटा सा भी, तो आगे के समय में जो विकराल काल आ रहा है, हल्के रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, तनाव नहीं रहेगा। जिम्मेदार जो है वो बैठा है ना, काम उसका है, हमने अपने को उसके हवाले कर दिया है, अब वो संभालेगा सब कुछ। वो संभालेगा या नहीं संभालेगा? हाँ, जिसको ये संशय रहता है उसको वो नहीं संभालता, संभालता तो है पर उन तक नहीं पहुंचती वो बात। इसलिए सेवा से श्रेष्ठ भाग्य बनाना, तन मन धन, धन भी। कई लोग पैसे वाले बहुत पैसा डाल देते हैं, किस भावना से डालते हैं ये देखना है। गरीब लोग थोड़ा सा डालते हैं, किस भावना से डालते हैं जानते हैं ना सभी, भावनाओं में अंतर। ये अंतर प्रारब्ध में बहुत बड़ा अंतर कर देता है। कोई इसलिए देते हैं हमारा नाम बहुत हो जाए, हम आगे आगे रहें, आगे तो रहने को मिल जाएगा पर बाकी भाग्य खत्म हो जाता है। हमारी हर सेवा हमें बल देती है, ये याद रखना है। बल, अगर बल नहीं मिल रहा है केवल खुशी हुई थोड़े समय की, तो उसकी भावी प्रारब्ध सुंदर नहीं रहती। तो हर सेवा का हमें बल मिले, हर सेवा हमारा भाग्य बना रही है, और सबसे ज्यादा भाग्य बनता है योग बल से। इसलिए बाबा की मुरली में आता ही रहता है, तुम योग बल से स्वर्ग की राजाई प्राप्त कर रहे हो। सबसे बड़ा भाग्य योग बल से बनता है। तो हम श्रेष्ठ योगी बनेंगे, और ज्ञान दान से भी भाग्य बनता है, जो आप सबने सुनाया। किसी को भगवान से मिला दिया वो भी बहुत बड़ा भाग्य बनता है। बाबा कहा करते थे, घर में गीता पाठशाला खोलो, 4 लोग भी आते हैं ना, उनमें से एक भी राजा बन गया तो तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य बन जाएगा। तो सभी अपना भाग्य बनाते चलें, सोने न दें भाग्य को। कैसे सो जाता है बोलो, भाग्य को भी तो थकान होती होगी ना, सो जाऊं थोड़ा थकान उतर जाए। कैसे सो जाता है और कैसे जगेगा, एक छोटी सी बात याद रखेंगे। विस्मृति सुलाती है, स्मृति जगाती है। अगर हमें ये बहुत खुशी रहती है, मैं बहुत भाग्यवान हूं, देखो स्वयं भगवान मिल गए, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा, हम उसके काम आ रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है। साधारण बोली बोली माताएं भगवान के काम आ गई, कहा होगा ना भक्ति में, हे प्रभु जब आप आओ कुछ कहा होगा जरूर क्या कहा होगा मुझे पता नहीं, मैं तो करता नहीं था भक्ति, हमारी पिछले जन्मों में ही पूरी हो गई थी। सब छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। बाबा ने याद दिलाया था एक बार कि तुम कहते थे एक बार आ जाओ फिर गिन गिन के हिसाब लेंगे, बहुत देर लगा दिए, बड़ा बुलाया है, बहुत देर में सुनवाई की, अब आ जाओ जरा फिर देखेंगे। तो बाबा ने कहा गिन गिन के हिसाब ले लो, ऑफर कर दी, ले लो सारा हिसाब, प्यार है ना ये बहुत, वो सब कुछ देने के लिए आ गया है। तो हम भगवान के काम आ गए, ये बहुत बड़ी चीज है ना, हमारा थोड़ा सा धन भगवान के काम आ गया, विश्व कल्याण में काम आ गया, हमारी कोई योग्यता भगवान के कार्यों में लग गई, योग्यता भी होती है ना सबके पास, तो ये सब बहुत बड़े भाग्य हैं। इसको सभी बढ़ाते चलेंगे, धारणाओं से भी भाग्य बनते हैं, श्रेष्ठ कर्मों से भाग्य बनते हैं, हमसे कोई पाप कर्म ना हो ये बहुत ध्यान रखना है, दूसरी आत्माओं को प्योर बनाना इससे बहुत बड़ा भाग्य बनता है, सुख देने से भाग्य बनता है। तो सभी भिन्न भिन्न तरह से अपना भाग्य बनाएंगे तो भाग्य मास्टर भाग्य विधाता बन जाएंगे। अब इन चीजों का जो रियल स्वरूप है ना हमें अब आगे चल के दिखाई देगा कि जिन्होंने बाबा से बहुत भाग्य प्राप्त, बहुत वरदान प्राप्त कर लिए, वो दूसरे के सिर पे हाथ रख के वरदान दे देंगे। जिन्होंने बहुत शांति का भंडार भर लिया वो दृष्टि देंगे, दूसरे शांत हो जाएंगे। जिन्होंने प्योरिटी और ज्ञान की बहुत लाइट अपने अंदर भर ली, उस लाइट का साक्षात्कार दूसरों को होगा, मस्तक से श्रेष्ठ भाग्य दिखाई देगा, वो भी अपना भाग्य बनाने लग जाएंगे। बाबा ने कह दिया तुम्हारा मस्तक टीवी स्क्रीन बन जाएगा, स्क्रीन समझे ना, टीवी का आगे आगे होता है ना काला काला जिसपे चित्र आते हैं, वो टीवी स्क्रीन, तो तुम्हारे मस्तक पे चित्र आने लगेंगे, आएंगे, किसी का मस्तक छोटा है किसी का बड़ा, टीवी स्क्रीन बन जाएंगे हमारे चमकते हुए मस्तक, लोग अपना भाग्य पढ़ने लगेंगे उसमें। ये सब बाबा ने बहुत कहा है 69 में जब बाबा व्यक्त हुए ना, उसके बाद मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आते थे भोग के, सब तो लिखे नहीं गए, लिखने वाले ही नहीं होते थे, तो वो हमने सुने थे, तब से याद है बहुत सारी चीजें, कुछ मुरलियों में भी कही गई लेकिन कुछ केवल संदेशों में आते थे, भोग लगता था ना, संदेश आते थे अच्छे अच्छे, छोटे छोटे संदेश भी होते थे, आधे आधे मिनट के, एक एक मिनट के, उनमें बहुत गहरी बात होती थी। मैं एक गहरी बात सुना देता हूँ आपको, मुझे याद रहती है वो, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। 72 की बात है, 72 तो हम लोगों ने छोटे छोटे, उन्हें सेमिनार कहते थे, कॉन्फ्रेंस तो बड़ी होती है, छोटे छोटे आयोजन तो बॉम्बे में किया था एक, तो जब छोटे छोटे भी प्रोग्राम होते थे तो सब जगह से लोग जाते थे, क्योंकि ज्यादा तो नहीं थे ना, जैसे प्रदर्शनी होती थी तो बड़े बड़े लोग जाते थे समझाने के लिए, छोटों को आता नहीं था, तो सम्मेलन हुआ वहाँ छोटा सा, तो शाम का टाइम था 8 बजे, 7:30 के बाद थोड़ा सा, तो इधर भोग लगा बाबा कमरे में, तो बाबा ने सीन दिखाया कि सेमिनार पूरा हो गया है मुंबई में, सब बच्चे बहुत आनंद मना रहे सफलता का, खुश हैं, देखो उसको दिखाया संदेशी बहन को, लेकिन उसको भूल गए जिसने सफलता दिखाई दी है, समझ गए ना, खुश हो रहे हैं लेकिन बाबा बीच से निकल गए, तो हमें एक सीख मिल गई कि देने वाले को भूलना नहीं है। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तब भी कहते थे, जो हिस्ट्री हॉल है ना, छत केवल उसी की होती थी बड़ी, वहीं पिकनिक करते थे। मान लो 15-20 भाई बहने आ गए पार्टी में, बहुत बड़ी बड़ी नहीं आती थी, तो बाबा के साथ पिकनिक करते थे। तो बाबा कहते थे ये बात कि मुझे ध्यान रहता है कि पिकनिक करने में इतना मगन ना हो जाऊं। से बाबा कहेगा खाने पीने में इतने मगन हो गए, मुझे ही भूल गए। बाबा ब्रह्मा बाबा का अपना तो सीखने को मिलता था कि जो नंबर वन आत्मा रही उसने कैसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया है कि कहीं भी करण करावन हार दाता जो सुप्रीम है वो भूल न जाए। इसने उसको भूल के हम यहाँ मस्त हो जाएं, हमने किया वारे में बाबा भूल ही जाए, इसका सबको बहुत ध्यान देना है। तो अपने स्वमान को बढ़ाते चलना है, यही हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनाने की सबसे श्रेष्ठ और सहज विधि है। जो जितने स्वमान में रहेंगे संकल्प महान बनते जाएंगे, स्थिति महान बनती जाएगी, कलयुग के इफेक्ट से हम मुक्त रहेंगे। ये बहुतों का प्रश्न रहता है, कुमारों का खास, कलयुग का प्रभाव आता है, वाइब्रेशंस गंदे हैं, आवाजें ही गंदी हैं चारों ओर, उससे कैसे बचें? स्वमान में रहेंगे तो हमसे ही पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे, अंग अंग से फैलते हैं वाइब्रेशंस, प्रकृति से ज़्यादा फैलते हैं, नैनों से बहुत फैलते हैं, तो वो वाइब्रेशंस नष्ट होते जाएंगे। तो सभी अपने अपने स्वमान चुन लेंगे, कम से कम 5 हमेशा लेके चलने चाहिए, कोई भी 5 स्वमान, उससे स्थिति महान रहेगी, योग युक्त जीवन बनाना सहज होगा। ओम शांति।